हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई व्यक्ति अगर जीवन के लास्ट स्टेज में है तो वो कभी भी वो बात बोलता है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। लास्ट मोमेंट पे बेफजूल की बातों करने के लिए समय नहीं होता है ना। तो हम लोग ऐसा हमेशा बोलते हैं कि टॉक फ्रॉम डेथ बेड, मतलब मृत्यु शैया के ऊपर इसने ऐसा कहा था। जैसे हमारे एक हमारे गुरुदेव हैं परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, कुछ चित्रपट है यहाँ पर नहीं होगा सर, तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज उनके गुरु भाई हैं, यानी कि उनके गुरु के शिष्य, सेम गुरु के दोनों शिष्य। उनका नाम है भक्ति तीर्थ स्वामी। तो वो भी लास्ट स्टेज में थे अपने जीवन में, तब उन्होंने लास्ट स्टेज में हमारे गुरु जी को कहा कि आप अपने जीवन की कहानी किताब में लिखो। तब तक हमारे गुरुदेव उनके जीवन की कहानी लिखने में तैयार नहीं थे। कितने लोगों ने उनको बताया लेकिन उन्होंने लिखा नहीं। लेकिन जब लास्ट स्टेज में अपने डेथ बेड पे उनके गुरु भाई ने उनको बताया कि आपको अपना जीवन का कहानी बताना है और लिखना है, तो उन्होंने लिखा। क्योंकि वो कहते हैं ना, जाने वाले की वो विश होती है। तो आपको लगेगा कि मैं सब ये आपको क्यों बता रहा हूँ, इसमें से कौन जा रहा है? कोई नहीं जा रहा है, सब लोग बैठे हैं। लेकिन मुझे आप एक ऐसा समय बताओ आपके जीवन का, 4 साल की उम्र वाला बताओ या 2 साल वाला बताओ या 10 साल वाला बताओ, 50 साल वाला बताओ या 60 साल वाला बताओ, जिस समय पे मृत्यु नहीं हो सकती है। आपके जीवन में ऐसा कोई डेथ प्रूफ समय है क्या कि आप उस टाइम निश्चिंत हो कि 10 साल होकर 10वें दिन मेरा मृत्यु नहीं हो सकता? 11वें दिन हो सकता है, 9वें दिन हो सकता है, लेकिन 10 साल होने के बाद 10वें दिन मेरा डेथ नहीं हो सकता है। वो दिन मेरा डेथ प्रूफ डे है। ऐसा है किसी के जीवन में? इस लोक का नाम क्या दिया मालूम आपको? इस लोक का नाम क्या है? मृत्यु लोक का आ गया है। क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमन चीज यहां पर कौन सी है? वो है मृत्यु। क्योंकि जन्म होता है तो मृत्यु होती है, ये सबसे बड़ी रियलिटी है। बाकी सब जो रियलिटी है वो उसके बाद वाली रियलिटी है। सबसे टॉप रियलिटी कौन सी है? यहाँ पर हर आदमी आता है और वो हर आदमी मरता है। हर जीव, कुत्ता, बिल्ली, पंछी, कीटक, मच्छर, मनुष्य, देवता भी, इनका जन्म होता है, उनकी मृत्यु होती है। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु ध्रुव मणि निश्चित है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि हम ट्रेनिंग लेके कहीं जाएंगे और आज आपका लास्ट हफ्ता है, वहां पर जाएंगे, फिर कुछ समय रहेंगे, फिर और कई जगह नहीं जाएंगे। लेकिन ये सारा जो शो है ना, बहुत बड़ा शो है ये, इसका एंड निश्चित है। प्रधानमंत्री का भी शो का एंड है और गरीब भिखारी के शो का भी एंड है और मच्छर के शो का भी एंड है। बहुत इधर उधर रात को घूमेगा, हाँ, प्रधानमंत्री को भी 4 जगह काटेगा, उसको हिला देगा वो प्रधानमंत्री, तो क्या हुआ, मैं तो काटूंगा उसको। उसका भी ये जो शो है वो एक दिन समाप्त होने वाला है। सुबह देखेगा वो नीचे गरा हुआ मिलेगा आपको, आपका एक खून पी के नीचे मरा हुआ मिलेगा आपको। तो आपको अगर जीवन का अगर अल्टीमेट संदेश सुनना है तो लास्ट टाइम मैंने आपको कहानी बताई थी ना, धुंधुकारी और गोकर्ण की, वो जो भागवत है जो उन्होंने सुनाया, उसकी कहानी क्या थी? जो कहानी उन्होंने उनको सुनाई वो कहानी क्या थी? उस कहानी का सारी यही है कि राजा परीक्षित को शाप मिला कि 7 दिन के बाद तुम्हारा सर्प पक्षी से द्वारा काटा हुआ दंश होकर आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो वो जाके बैठ गए गंगा किनारे, हम लोग जाके बैठते थे कहीं एंजॉय करने के लिए, क्लब में, पार्टी में। सात ही दिन है, बहुत बहुत पैसा है, एंजॉय करो जितना हो सकता है उतना, आठवें दिन में मरना है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो जाके गंगा किनारे गए विरक्त होकर। साधु लोग आए सब लोग वहाँ पर, क्योंकि महान राजा थे ना वो, साधारण व्यक्ति नहीं था वो। तो वहाँ से सुखदेव जी आए, व्यास देव के पुत्र है, वेद व्यास के, व्यास देव ने सब शास्त्र लिखा, उनके पुत्र है वो। तो वो वहाँ से आए, 16 साल की उम्र के थे वो। व्यासदेव जी भी आए, नारद जी आए, अगस्त्य जी आए, सब लोग आए वहाँ पर बैठ गए। और परीक्षित महाराज ने, जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे बैठकर अपने गुरु जी के सामने, सुखदेव जी के सामने एक प्रश्न किया। वो प्रश्न है ना, हम लोग कहते हैं ना कि वो हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है। जो सबसे गरीब से गरीब है, सबसे कम पढ़ा लिखा है, सबसे अमीर से अमीर है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, सुंदर है, नहीं सुंदर है, काला है, गोरा है, देश का है, गांव का है, अमेरिका का है, इंडिया का है, अच्छी जाति का है, खराब जाति का है, किसी भी प्रकार का जीव है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उसने पूछा। और क्या पूछा? कि जो व्यक्ति मृत्यु के सामने खड़ा है उसका कर्तव्य क्या है, उसको क्या करना चाहिए। तो आपको लगा होगा कि उसको 7 दिन के बाद मृत्यु का शाप मिला है इसलिए वो पूछ रहा है, लेकिन आप लोगों को और हमको कोई छाती ठोक के बता सकता है क्या कि 7 दिन के बाद आप रहेंगे, 7 मिनट के बाद रहेंगे, 7 घंटे के बाद रहेंगे, ऐसा कोई बोल सकता है? इसका मतलब प्रश्न किसके लिए पूछ रहे हो? हम सब के लिए पूछ रहे हैं। उनके लिए कम से कम 7 दिन का नोटिस पीरियड है कि 7 दिन के बाद ही मरेंगे वो, 7 दिन के पहले नहीं मरेंगे, 7 दिन के बाद मरेंगे। हमारे पास कोई नोटिस पीरियड नहीं है, हमारी घंटी कब बजेगी कोई बता नहीं सकता है। तो उसने सबके लिए मिलकर ये प्रश्न किया था, सबके लिए, कि जो मृत्यु के सामने खड़ा है उसको क्या करना चाहिए। उसके उत्तर में श्रीमद् भागवत ये शास्त्र कहा गया है, 18,000 श्लोक उसके उत्तर में कहे गए कि कर्तव्य क्या है जो मृत्यु के सामने खड़ा है। अभी 18,000 श्लोक समय इतना नहीं है बोलने के लिए, लेकिन सारांश में आपको बताना है कि कर्तव्य क्या है। तो कहते हैं कि जो जीवित भी है और जो मरने वाला है, दोनों के लिए कर्तव्य एक ही है, वो है तुरंत भगवान की शरण ग्रहण कर लेना, क्योंकि उस समय कुछ काम नहीं आता है। हम लोग बड़े भाग्यवान लोग हैं, हम लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, हम देखते हैं, हम सारा चीज़ हमारे पास, ICU है, मॉनिटर है हमारे पास, इधर मेडिकल का स्टॉक है, उधर भी मेडिकल की दवा है, स्ट्रेप्टोकाइनेस है, एड्रेनालिन है, हमारे पास क्या नहीं है, CPR का इक्विपमेंट है, DC शॉक का इक्विपमेंट है, हर प्रकार का मॉनिटर, हाईफाई हमारे पास है, हाईफाई डॉक्टर भी हमारे पास है, क्या नहीं है, कैसे मरेंगे आप देखते हैं हम। लेकिन ये सारा चीज़ होते हुए हमारी आंखों के सामने, सारे प्रयास के बाद, सारे प्रयास को फेल करते हुए हमारी आंखों के सामने वो चला जाता है। और कभी कभी डॉक्टर बोलते भी है, अभी आप भगवान का नाम लो, अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, या तो घर ले जाओ। तो एक स्थिति ऐसी आती है ना डॉक्टरों के सामने भी, समझो वो देश का प्रधानमंत्री है, तो क्या नहीं है, लेकिन उसके लिए बोलेंगे अभी कुछ नहीं है। कितने बड़े नेता अभी किधर रहे, महात्मा गांधी किधर है, जवाहरलाल नेहरू किधर है, लॉर्ड माउंटबेटन किधर है, प्रिंस ऑफ वेल्स किधर है, अभी किंग ऑफ इंग्लैंड किधर है, नेपोलियन कहाँ है, सिकंदर किधर है, अभी इतने बड़े योद्धा थे वो, वर्ल्ड विनर थे, आज कहाँ है? काल के प्रभाव के अंदर सब हरी बोल हो गए हैं, कोई नहीं है आज। और वो सिकंदर भी ऐसा ही था, पूरे वर्ल्ड को उसने जीत लिया था। और जब मरने का समय आया ना, तो उसने बोला था मरने के पहले, मेरे दोनों हाथ ना मेरे कॉफिन, क्या होते हैं उसको, कफन के बाहर निकालो। वो तो बहुत खराब अवस्था में था, तो उसने बोला तो उसके दोनों हाथ है ना ऐसे कफन के बाहर निकाले गए। तो उसने कहा, देखो मेरे हाथों को एकदम गौर से देखो आप, मेरे हाथ खाली हैं और मैं मर रहा हूँ, दुनिया का राजा हूँ मैं, लेकिन आज जाने के समय मेरे दोनों हाथ खाली है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और बाय द वे मैं आया था ना, तभी भी खाली हाथ ही आया था। कितनी बड़ी बात बताई उसने। इसलिए हम कहते हैं ना कि जो लास्ट में बोलता है ना आदमी, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलता है, सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज लगती है उसको, वो लास्ट में बोलता है। बाकी बेफजूल की बातें दुनिया भर करते रहते हो, तो इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम पास, जो इधर उधर का जरूरत के बिना, इधर की बातें उधर की बातें, पॉलिटिक्स, गांव में क्या हो रहा है, कौन से फिल्म स्टार ने कौन सा लफड़ा किया, ये दुनिया भर बोलते रहते हैं, लेकिन एंड में वो ऐसी बात करता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो सिकंदर ने वही बात बताई। राजा बुद्धिमान था इसलिए उसने प्रश्न किया, 7 दिन मेरे पास है, क्या करना चाहिए? तो 7 दिन फिर उसने कैसे बिताए मालूम है आपको? अन्न, जल, निद्रा सबको त्याग दिया उसने, एक जगह बैठा, ना रात को सोया ना दिन में सोया, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, ना कुछ रेस्ट लिया, बीच में ब्रेक लिया, कुछ नहीं। 7 दिन 7 रात लगातार सुखदेव जी महाराज के सानिध्य में बैठकर उसने श्रवण किया, प्रश्न पूछे उसका उत्तर सुना, और प्रश्न पूछे उसका उत्तर सुना, भगवान की कथाएं सुनी, भगवान के भक्तों की कथा सुनी, और उसका उत्तर यही था कि तुरंत अपने आप को भगवान के शरण में ग्रहण करो। फिर क्या हुआ पता है 7 दिन के बाद में? 7 दिन के बाद में जब सर्प पक्षी आकर उनको मारने वाला था ना, काटकर उसकी मृत्यु होने वाली थी, उसके पहले ही इनकी आत्मा भगवान के पास जा चुकी थी, और सर्प के आके काटने का जो था विधान वो केवल एक फॉर्मेलिटी बन गया। चलो बोला है ना, अभी क्या करें, उसको तो आना ही अपना काम पूरा करने के लिए। लेकिन जब वो सर्प ने आके काटा तो उसने डेड बॉडी को काटा, उसके काटने से उसकी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि वो भगवान के विषय में श्रवण करके सुन के इतना पवित्र हो चुका था कि स्वयं शरीर त्याग करके चला गया वो, बिना दुख के, बिना कष्ट के। तो सबसे जो ऊंची वस्तु है लाइफ में, चाहे आप देखो अभी कितने वैरायटी के लोग बैठे हैं यहाँ पर, कुछ स्त्रियां बैठे हैं, कुछ आदमी बैठे, हर एक आदमी अलग है यहाँ पर, हर एक स्त्री यहाँ पर अलग है, हर एक जीव यहाँ पर अलग है, किसका का बैकग्राउंड, किसकी जाति, किसका देश, किसका कलर, किसकी भाषा, किसका एजुकेशन, किसका अंडरस्टैंडिंग, बुद्धि, मन, सब डिफरेंट है ना यहाँ पर। लेकिन आप सब लोगों में, हमारे में एक कॉमन चीज़ है, आप पर आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। वो अलग शरीर में यहाँ बैठा है, मैं अलग शरीर में इधर बैठा है, लेकिन हम सब लोग एक आत्मा हैं। सबका क्या कहते हैं ना, नेचर, स्वभाव सबका आत्मा का सेम है, सबका क्वालिटी जो आत्मा की है वो सेम है, चाहे आप दिखने में कैसे भी हो, लेकिन हमारे आत्मा और आपके आत्मा में समानता है, और हमारे और हमारे आपके आत्मा भगवान का अंश है, सेम, वो जिस क्वालिटी के हैं उसी क्वालिटी के हमें, वो बहुत बड़े हैं, विभू हैं, और हम अणु मात्र हैं बस, लेकिन ये रियलिटी है। और ये रियलिटी होने की वजह से हम सब लोगों का गोल, लाइफ का लक्ष्य है ना, वो भी सेम रहता है। अभी आप यहाँ से जाएंगे तो आपके लाइफ का गोल बदल ही नहीं होगा, और यहाँ रहेंगे भी तो लाइफ का गोल बदल ही नहीं होगा, लाइफ का गोल सेम रहेगा। बुढ़े हो जाएंगे तो भी लाइफ का गोल बदल ही नहीं होगा। ये मत समझना कि लाइफ, प्राइम मिनिस्टर का लाइफ का गोल अलग होता है और आपका अलग होता है, और एक भिखारी का अलग होता है और आपका अलग गोल है, नहीं, वो दुनियादारी के गोल है, पैसे के, प्रॉपर्टी के, इसके उसके, लेकिन आत्मा का लक्ष्य जो है ना वो सेम रहता है। हम हमेशा कहते हैं, आप भक्ति वेदांत के बगीचे में आए हो कुछ समय के लिए, यहाँ पर एक भगवान की दिव्य खुशबू है कि नहीं है? वो मोगरे की और उसकी नहीं, गुलाब की नहीं है, वो एक भगवान के विषय की खुशबू है, जिसमें वातावरण में वो दिव्यता है। इसलिए किसी भी और बाग में आप जाओगे ना कभी भी, तो यहाँ का फूल जरूर जेब में डाल के जाना, और उसी खुशबू में रहना, दूसरों को भी वो खुशबू देना। और वो क्या है? वो ये नॉलेज है कि हम कौन हैं और हमारे जीवन का पर्पस क्या है और हम किसके लिए यहाँ पर आए हैं। बाकी तो कुत्ता बिल्ली भी आते हैं, कौन सी बड़ी बात है, सब लोग दुनिया में जीते हैं, पंछी भी जीता है, मछली भी जीती है, पेड़ भी जीता है, हम भी जीते हैं, कुत्ता बिल्ली और गधा भी जीता है, अंतर क्या है उसके अंदर? अंतर एक ही है कि हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और बाकी लोग नहीं कर सकते, कुत्ता बिल्ली और गधा और हाथी। तो हम क्यों ना उनको प्राप्त करें, जिनको प्राप्त करने की कैपेसिटी भगवान ने हमको दी है। तो जो 8 दिन में जा रहे हैं और जो रहेंगे यहाँ पर, दोनों के लिए मैसेज एक ही है, कोई डिफरेंट मैसेज नहीं है। जहां भी रहो, जैसे भी रहो, जो भी कुछ करते रहोगे, भगवान को नहीं भूलना कभी, उनको जीवन से बाहर भी निकालना नहीं, हमेशा अंदर रखना उनको, और उनके लिए ही जीना। और पैसा आएगा जाएगा, आज आप थोड़ा कमा लोगे, कल दीवारखोर बन जाओगे या कुछ घटना होगी, सब पैसा साफ हो जाएगा, फिर आएगा और फिर जाएगा, फिर कभी हेल्थ खराब होगी, फिर कभी अच्छी हेल्थ होगी, फिर कभी बिगड़ जाएगी। आज यौवन है, जवानी है, कभी बुढ़ापा आ जाएगा। ये सब बदलने वाली चीज़ें हैं, इसमें कुछ गर्व करने की बात नहीं है। आज कोई ऊंचे पद पर है तो कल फकीर बन जाएगा, कितनी कहानियाँ हैं इतिहास में हमारी, कुछ नया थोड़ी है। तो इसलिए आज जो हमारी स्थिति है उसमें गर्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और राजा बन के घूम रहा था, सांप मिल गया, 7 दिन में मर जाओगे, कहाँ का राजा, 7 दिन के बाद था ही नहीं वो इधर, राजा होने का सवाल ही नहीं उठता है। मराठी में कहते ना, होत्याचं नव्हतं झालं, बोलते ना मराठी में, अरे आज सब कुछ था, अभी कल एकदम जीरो हो गया सब कुछ। 25 जनवरी 2001 को गुजरात में सब लोग रात को आराम से सोए मजा करके, 4:15 में सभी 4-4 मंजिल की बिल्डिंग जमीन के अंदर थी भूकंप के रूप में। इमेजिन, मैंने सब आंखों से देखा है, मैंने 35 दिन वहां पर सेवा किया है, सब आंखों को देखा, हाल मेरे मन में अभी भी रेडी है। 4th मंजिल के ऊपर की जो टाकी है ना, वो भी मेरे सामने जमीन पर है, वो पूरी बिल्डिंग जमीन के अंदर है, लोगों के साथ, सामान के साथ, कपाट के साथ, कॉट के साथ, सब सामान के साथ, सारी प्रॉपर्टी पेपर, सभी फ्लैट के इन्वेस्टमेंट के पेपर, जितने भी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है वो सब जमीन के अंदर है और मिल नहीं रही है। इतना बड़ा खड्डा जमीन में गिर गया, वो भी पृथ्वी कितनी देर हिली मालूम है आपको, केवल 5-6 सेकेंड के लिए हिली, और इतने बड़े गड्ढे बनाकर सबको अंदर डाल दिए, पूरा जीवंत समाधि। अब पता है हमने क्या देखा चित्रपट वहां पर, हम वहां पर सेवा करने गए थे, पुलिस लोग ऐसे खोद रहे हैं ना लोगों को निकालने के लिए, उनको पता है बिल्डिंग में कौन कौन निवासी, उसका लिस्ट है उनके पास, वो देख रहे हैं कोई जिंदा अगर बचेगा तो उसको निकाल लेते हैं। जब वो खोद रहे हैं तो समझो, समझो ये ऑफिस खोद रहे हैं समझो जमीन के अंदर, तो आपको फिर ये कंप्यूटर मिलेगा, प्रिंटर मिलेगा, तो वो स्पीकर भी मिलेगा, ये भी मिलेगा आपका, वो बार कोड वाला वो मिलेगा, मनी काउंटिंग मशीन मिलेगा, ये फोटो भी मिलेगा, ऐसा कुछ निकलेगा ना बाहर। तो जैसे ही वो निकल रहा है, वहाँ पर गाँव के सारे लोग टूट पड़ रहे हैं चोरी करने के लिए, किसी का सोने का बॉक्स है, किसी का कपड़ है, किसी का तो कुल्हाड़ी से तोड़ रहे हैं, उसके अंदर से कोई गहना है, कोई लिखा है ना अपने अंदर कोई तिजोरी में, सब चोरी कर रहे हैं सब लोग। इतना दुख हुआ उस देखे, लोग मर रहे हैं और चोरों को चोरी करने की पड़ी है, उनको बिल्कुल दया माया नहीं है। वो तो टूटा हुआ हाथ भी निकल रहा है, बीच में कोई तोड़ रहे तो भरा हुआ प्लेट भी निकल रहा है, उसको बाजू में करके वो माल निकाल रहे उसमें से। देखो कैसे मनुष्य की प्रवृत्ति है, मतलब आंखों में कुछ दया माया कुछ है ही नहीं, करुणा विरुणा, स्वार्थ इच्छा भरा हुआ है कि तुम मरो लेकिन मुझे दो, मुझे चाहिए। एक दिन नहीं, हमने 35 दिन तक देखा है, जहां जहां खोद रहे वहां लोग चोर खड़े हैं, उनको रोकने के लिए ताकत भी नहीं पुलिस की, इतने चोर है और कुछ लोग खोद रहे हैं, और क्या सबको गोली मारेंगे, सब लोग ले लेके भाग रहे हैं, सोच रहे यही जिंदगी है, यही मौका है, लेकिन पता नहीं इतने पाप इकट्ठा करेगा और कहां नरक में जाके भोगेगा उसको, जो तुम्हारा नहीं है उसको तुम छीन छीन के भोगने का प्रयास कर रहे हो। ये है दुनिया का स्वरूप। उधर यहां से ट्रक जा रहा है गुजरात की ओर, तो रस्ते में लूटा जा रहा है उनको, कुछ गन वाले पार्टी खड़ी है, उनको ड्राइवर को इधर लेके जाओ, और वो गुजरात नहीं जा रही, वो किधर गांव में घुसा के खाली करके उसमें धन धान्य भरा है ना, पूरा टनों का गेहूं और चावल लोगों को बांटने के लिए भेज रहे हैं उधर, मदद करने के लिए कपड़ों का ट्रक भेज रहे हैं, कोई दवाई का भेज रहे हैं, कोई भोजन का भेज रहे हैं, कोई रेडीमेड रेडी खाने का जो होता ना बिस्किट होते ऐसे भेज रहे हैं, सब डाइवर्ट कर रहे हैं अपने गांव में, सब खाली करके भेज रहे हैं उनको बंदूक के धाक के ऊपर। ऐसी दुनिया है जिसमें हम लोग सब जी रहे हैं, मन में सब लोग ऐसा स्वार्थी ऐसा वासना से तड़प रहे हैं सब लोग, किसी को दया माया किसी पर नहीं है। इसमें से हमको ना पार होना है, यहाँ दोबारा आने की कोशिश मत करना, बहुत कष्ट है यहाँ पर, बहुत कष्ट है, और कोई छूटने वाला नहीं यहाँ पर, जो भी करेगा यहाँ पर सबका बिल सबको देना पड़ेगा। इधर आप अंधेरे में अकेले भी कुछ करोगे ना तो भी सूरज चांद आपको देखते रहते हैं, भगवान के दूत आप कैसा भी CCTV लगा कर रखा है ना, वो भी एक कोई देख रहा ना, किसी की आँख आपके ऊपर है ना, क्या कर रहे हैं हरिप्रिया 9 बजे, वो क्या है किसी की आंख है ना आपके ऊपर, कहीं ना कहीं बैठा है वो देख रहा है स्क्रीन में। हम लोग ऐसा स्क्रीन बना सकते हैं तो भगवान का स्क्रीन कितना बड़ा है मालूम है क्या आपको, सब जगह उनकी नजर है, कोई बच नहीं सकता इसमें से, कोई छुपके कुछ पे कोई बच नहीं सकता है। नॉलेज इसको ही कहते हैं, नॉलेज ये नहीं कि मैंने ना सबको उल्लू बना के ऐसा काम किया किसी को पता नहीं मैंने किया करके, लेकिन पता कैसे नहीं, सब रिकॉर्ड पर दिखाए जा रहे हैं, समय आएगा तो सब दंड मिलेगा उसका। नॉलेज जिसको कहते हैं, नॉलेज ये नहीं कि आपने पीएचडी किया है और डी फार्म एम फार्म और उसमें पीएचडी किया है, वो नॉलेज नहीं है। नॉलेज ये है, चाणक्य पंडित ने बताया नॉलेज क्या, व्याख्या क्या है, तीन चीज की बताया उन्होंने, आप लोग ध्यान से सुन लो, केवल मुझे वो आवश्यक नहीं है आपको भी आवश्यक है समझना। वो तीन चीज क्या है, परद्रव्येषु विषवत्, दूसरे का धन जो विष के समान समझता है, दूसरे का, दूसरे की वस्तु, दूसरे की प्रॉपर्टी, दूसरे का धन, दूसरे की जो भी उसकी चीज है वो मेरे लिए पॉइजन है, पॉइजन की तरह काम करेगा अगर मैं छीन लूंगा तो। ये जिसको नॉलेज है वो ज्ञानी है। दूसरा परदारेषु मातृवत्, दूसरे की स्त्री को, मेरे पत्नी के अलावा जितनी भी स्त्रियां हैं, मातृवत, जब मैं माँ की तरह उनको देखता हूँ, चाहे वो इतनी सी हो, मेरे पोती की उम्र की हो या मेरी दादी की उम्र की हो, लेकिन जो मेरे पत्नी को छोड़कर जितनी भी स्त्रियां हैं दुनिया में, परदारेषु मातृवत्। और तीसरा नॉलेज का प्रूफ ये है, आपको नॉलेज है इसका मतलब, आत्मवत सर्वभूतेषु, जो अपने जैसे सबको ट्रीटमेंट देता है, जैसा आपको अच्छा लगेगा वैसे ट्रीटमेंट मैं आपको दे रहा हूं। अगर मुझे आपसे गाली खाना अच्छा लगता है तो मैं आपको गाली दूंगा, और अगर मुझे आपसे गाली खाना अच्छा लगता नहीं है तो मैं आपसे अच्छी बात करूंगा, ताकि जो मुझे आप करने से अच्छा लगेगा वही मैं आपके करूंगा। इसका मतलब है आत्मवत सर्वभूतेषु, खुद के जैसे सबके लिए व्यवहार करता है, जैसा खुद को अच्छा लगेगा वैसे ही सबसे व्यवहार करेगा। मैं डांटूंगा तो आपको अच्छा लगेगा, तो इसलिए आप भी मुझे डांटेंगे नहीं क्योंकि आपको भी अच्छा लगेगा नहीं। तो इस तरह से जो व्यवहार करता है, इस तीन जो चीज करता है, तो तीन वस्तु जिसको पता है उसको ज्ञानी कहा गया है। उसको ज्ञानी नहीं कहा गया जिसने बहुत डिग्री कमाया है, उसको बहुत पगार मिलता है, बड़ा बड़े पोस्ट पर है डिग्री की वजह से, वो ज्ञानी नहीं है। क्योंकि इतने बड़े पोस्ट जाने के बाद भी, इतनी बुद्धि होने पर भी वो क्या बनाता है, एटम बॉम्ब बनाता है। एटम बॉम्ब बनने से क्या होता है, वर्ल्ड का नाश हो सकता है। आपने बुद्धि का इस्तेमाल इसलिए किया है कि वो बुद्धि का परिणाम क्या है कि आप डालोगे बॉम्ब तो पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। थोड़ी वो ज्ञान है, ऐसा चीज बनाओ जो उसमें कुछ बन सकता है नया। नाश तो कोई भी कर सकता है, बच्चा भी ऐसा ग्लास का खाली फेंक देगा तो वो टूट जाएगा, उसमें क्या बड़ा काम किया बच्चे ने। ग्लास बनाओ आप उसको कांच से, कुछ तैयार करो उससे, तो फिर आप बोलेंगे कुछ बनाया मैंने। लेकिन अधिकतर लोग नाश करने में ही सक्षम रहते हैं, बनाने में किसी को आता नहीं, तोड़ने को बोलो आ जाता है। स्टेशन बनाओ पूरा रेलवे का, कितना टाइम लगता है, लेकिन एक दिन संप करो और फिर क्या है, पत्थर फेंको, दो मिनट के एक घंटे के अंदर पूरा स्टेशन डिस्ट्रॉय, पूरा कंप्लीट, ना चकाचक बनाया था, सब पानी हो जाएगा पूरा उसका, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। तो नाश करने में कोई गर्व की बात नहीं है, बना दो कुछ, दुनिया के लिए कुछ अच्छा कार्य करो जो दुनिया के काम आएगा। दुनिया का नुकसान करना तो आसान है, गाली देना आसान है, दो अच्छे वाक्य बोलो तो सोचता ही नहीं, इनके बारे में तो अच्छा वाक्य बोलो याद ही नहीं आता कुछ, गाली दो बोलो तुरंत दस दस गाली देंगे, क्या है ये, ऐसी है वैसी है, दिखने में ऐसी है, बोलती है ऐसी है वैसा है, ये हमारा स्वभाव है। इसलिए इंसान बनना, बनकर जीना है ना, जब तक भगवान का कनेक्शन नहीं होता है ना, तो हमारा सारा जिंदगी ऐसा ही बेकार है। तो मैं वो आपको बता रहा था कि सब लोगों को भगवान देख रहे हैं। हाँ, इसकी एक स्टोरी है महाभारत में, वो स्टोरी है कि गुरु द्रोणाचार्य ने, वो तो सबके गुरु थे ना, कौरवों के भी थे, पांडवों के भी थे, सब उनके शिष्य थे। तो एक दिन उन्होंने उनका ज्ञान का परीक्षा करने के लिए, केवल वो नहीं कि धनुष बाण चलाने का, तलवार, यही नहीं, सब ज्ञान दिया उन्होंने उनको। तो एक दिन ज्ञान का परीक्षा करने के लिए एक फल जो है ना, एक सबको एक फल दिया, सेम फल, मुझे आम का बोलो या सफरचंद बोलो, सबको दिया वो फल, और बोला कि ऐसी जगह जाके खाना है जहां पर आपको कोई ना देखता हो। आपको देंगे तो आप चलो रूम में चले जाएंगे, बाथरूम के दरवाजे के पीछे जाएंगे, इधर पीछे नीचे जाएंगे, बच्चा हो तो अंदर जाके दरवाजा बंद करके जाएगा, कोई नहीं देख रहा है ना। तो सब लोग ने कहां कहां जंगल में, गुफा में, इधर उधर सब जगह गए, और सब लोग वो फल खाकर लौट के आए। और गुरुजी ने कहा था, पता नहीं कि आपने कहाँ खाया, ताकि मैं भी समझू, कोई देखता नहीं था उधर। सबने अपना अपना गुप्त जगह ढूंढकर बहुत देर के बाद में ढूंढा, और खाया और लौट के आए, और धर्मराज युधिष्ठिर जो है ना वो वैसा ही फल लेकर वापस आ गए। सबने बताया मैंने कहाँ कहाँ खाया, बोला अच्छी बात है। और धर्मराज ने बोला महाराज गुरुदेव कोई जगह नहीं है ऐसे जहाँ पर कोई देखता ना हो। बोला क्यों, इतने लोग जाके खा के आए, 104 लोग, उनको मिला जगह तुमको कैसे नहीं मिला। उन्होंने कहा हर जगह भगवान की दृष्टि है, कौन सी जगह ऐसे जहाँ भगवान नहीं देख रहे हैं, और आपने कहा था कोई दिखना नहीं चाहिए तो भगवान भी उसमें आते हैं। आपने कहा बोला भगवान छोड़कर बाकी सब लोग को दिखना नहीं चाहिए, आपने बोला कोई भी दिख किसी को भी दिखना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप ही अकेले ज्ञानी हो इसमें, बाकी अर्जुन भी पूरा ज्ञानी नहीं है, भीम भी पूरा ज्ञानी नहीं है, चाहे अच्छे लगे हैं लेकिन कोई भी ज्ञानी नहीं पूरा जितना आप ज्ञानी हो। फल वापस ले लिया उसे, क्योंकि उनको ज्ञान था पूरा इस बात का। तो अच्छा आदमी कौन बन सकता है, जिसको पता है कि मुझे कोई देख रहा है और मुझे गलत काम नहीं करना है, क्योंकि छुपके ऐसा कोई काम होता नहीं है, जो आप कर रहे हो कोई ना कोई देख रहा है और उसका दंड जरूर मिलेगा, वो ज्ञानी व्यक्ति है, इसलिए वो कभी बुरा काम नहीं करता है, उसको पता है मुझे देखा जा रहा है, कोई ऐसा कोई दिव्य CCTV है जिसमें मुझे देखा जा रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। हम सोचते हैं, बोलते हैं ना कि बिल्ली जो होती है वो आंख बंद करके दूध पीती है, कितने लोगों ने देखा है बिल्ली को, कभी ठीक से देखा है बिल्ली को, जब भी बिल्ली दूध पीती है ना तो आंख बंद करके पीती है। लेकिन हिंदी में कहावत क्या है, अभी घी देखा है बड़गा नहीं देखा, ऐसे कहावत है हिंदी में। वो घी खाते नहीं बिल्ली तो भी आंख बंद करके खाती है, उसको लगता है मुझे कोई नहीं देख रहा है। लेकिन कुछ ही देर बाद डंडा सर पे गिरता है तो सारा घी का आनंद भी समाप्त हो जाता है। डंडा तो गिरेगा ही, थोड़ी देर बाद में गिरेगा लेकिन गिरेगा जरूर। सही ज्ञान यही है, सही ज्ञान MBBS MD और PhD सही ज्ञान नहीं है, सही ज्ञान यह है इंसानियत का ज्ञान है। बाकी जो हमारा MBBS है आपका DPharm है ना, केवल पेट पालने का मार्ग है वो, आगे जाके दो रोटी कमाना है, परिवार को सहायता करना है, या कभी अकेला हो गए तो अकेले भी जीना है, तो उसका सहारा है वो। चाहे हमारा MBBS हो आपका DPharm PPharm जो भी कुछ है BSc BCom MBA, रोटी कमा के खाने का साधन है वो, ज्ञान का साधन नहीं है वो। ज्ञान का साधन वही है ये जो बताया मैंने कि भगवान है, हम भगवान के अंश है, जीवन का उद्देश्य उनकी प्राप्ति करना है, सब जगह वो देख रहे हैं, इसलिए कोई गलत काम करना नहीं चाहिए, उनकी ओर जाने का काम करना चाहिए, ये सही ज्ञान है। और वो ज्ञान प्राप्त किए बिना अगर हमारी मृत्यु हो गई तो हमसे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं है, क्योंकि ये जीवन इसी ज्ञान प्राप्त करने को दिया है, जो कुत्ता और बिल्ली प्राप्त नहीं कर सकता है, जो गधा हाथी बुद्धिमान प्राणी गाय ऊंट प्राप्त नहीं कर सकता है, हम लोग कर सकते हैं उसको। ये कथा भी जो आपको बता रहा हूं ना, ये आप लोग इंसान हो इसलिए यहां कथा हो रही है, अगर यहां कुत्तों का एक ग्रुप बैठा होता तो मैं इसमें से कुछ भी बात बोल नहीं सकता था, क्योंकि उनके समझ में नहीं आती थी वो बात कैसे हो गई। इंसान का इधर निवास है, इंसान का अस्तित्व है, सान्निध्य है, इसलिए ये सब बातें यहाँ हो रही है, आदान प्रदान हो रहा है, आप लोग सुन रहे हो एक्सेप्ट कर रहे हो, यही जीवन है और कुछ नहीं है, बाकी सब बेकार है। मुझे देर आने को देर क्यों हो गई, संक्षेप बता दो मुझे देर क्यों हो गई। हमारे हॉस्पिटल में एक ऐसा एक जोड़ी पति पत्नी के ऐसे आई जिनके पेट में ऐसा बच्चा था जो बहुत भयंकर बीमारी थी उसको पेट के अंदर से ही, एक भी चीज़ सही नहीं थी, सब चीज़ गलत थी, यहाँ से लेके उधर तक, अंदर से लेके बाहर तक, हर चीज़ बच्चे को। तो आमतौर पर लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं इसको गिरा दो, ये बच्चे का कुछ होने वाला नहीं है, ये जन्म तक बचेगा नहीं मालूम नहीं है, जन्म लेगा तो भी कितना मिनट बचेगा मालूम नहीं है, क्यों तकलीफ लेते हो, उसको गिरा दो आप। और ऐसे 100 में से या 1000 में से 999 बच्चे दुनिया में आते ही नहीं, क्योंकि उनको पहले ही गिराया जाता है। तो एकाध व्यक्ति जो रखता है उसको, वो क्यों रखता है मालूम है, भगवान का अंश है, भगवान ने जीवन दिया है, छोटा हो जिमोड़ा लंबा जीवन हो तो क्या हुआ, उनको तय करने दो ना, उनकी ज़िंदगी दी हुई है, वही तय करेंगे कब लेना है उसको, हम लोग क्यों बीच में तय कर, डॉक्टर तय करते हैं, उसको उतार दो। तो वो परिवार ने सोचा कि नहीं गिराना है, हमको रखना है हमारा, पूरा जितना समय उनको पता चला जब से सोनोग्राफी करने के बाद, शायद 3 महीने के बाद पता चला, 3 महीने से लेकर आखिरी महीने तक रोज बच्चों को कीर्तन सुनाया, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, भगवान नाम जप सुनाया, कीर्तन किया, मंदिरों में गए, जो भी भक्ति मार्ग में बनता है वो सब बच्चे को, और बच्चे से बात भी करते थे क्योंकि बच्चा सुनता है। कितना लोगों को विश्वास है इस बात को, गर्भ में बच्चा सब कुछ सुनता है, सब कुछ सुनता है, सब समझता भी है। कुछ लोग इतने होशियार होते हैं बच्चे को अंदर गणित सिखाते हैं, संस्कृत के श्लोक सिखाते हैं, हमने भी सिखाया है, उसका साइंस है कैसे सिखाना है, अंदर से ट्रेनिंग चालू पहले से ही, जन्म से अंदर से ही। तो उसने सब कुछ उसको सुनाया कि तुम कौन हो, तुम भगवान के अंश हो, मैं तुम्हारी माता हूँ, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, मैं तुम्हें गर्भ में आश्रय दे रही हूँ, पता नहीं ज़िंदगी कितने दिन चलेगी, लेकिन जितनी भी चलेगी अंदर से बाहर से भगवान का नाम सुनो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का श्रवण करो, चिंतन करो, जब चाहे भगवान जब ले जाएंगे तो अलग बात है, लेकिन जब तक हो तब तक रहो और भगवान का आश्रय ले लो। माँ को कोई तकलीफ नहीं है, बच्चे को अलग अलग बीमारी अंदर है, उसको भी अंदर नॉर्मल चल रहा है प्रेगनेंसी, माँ को भी कोई तकलीफ नहीं है। तो पूरे महीने उसको कीर्तन सुनाया, और एक तो दुबई से लेकर भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में आए, और बच्चे ने यहाँ पर भगवान के वातावरण में पूरा तैयारी करके, मन की, आत्मा की, बुद्धि की सब तैयारी करके यहाँ पर जन्म दिया। जन्म होते ही गंगा जल दिया उसको, भगवान का पूरा नाम कीर्तन सुनाया, और बच्चे ने शरीर छोड़ दिया 1 घंटे के बाद। सब तरफ से भगवान के भक्त लोग मौजूद थे उधर, जन्म से समय पे भी, जन्म के डिलीवरी के समय पे भी हमारे स्पिरिचुअल केयर के माताजी लोग उनका हाथ पकड़ के भगवान का नाम, नरसिंह भगवान की प्रार्थना गा रहे हैं, वो भी गा रही है, वो हाथ पकड़ने वाली भी गा रहे हैं। और जन्म होता है उसके अंदर सबसे पहले उसको भगवान का नाम सुनाया जाता है, अंदर सुन ही रहा है वो, लेकिन दुनिया में प्रवेश करते ही भी भगवान का नाम सुनाया जा रहा है। इस तरह से पूरा उसका 3 महीने से लेकर, जब से 3 महीने मालूम पड़ा तब से आज तक का पूरा जो यात्रा था वो सब भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के वातावरण में संपन्न हुआ, अच्छी तरह से हुआ, सब कुछ उसका ठीक से हुआ। और आज उनका भी इंटरव्यू चल रहा था, उनको बताना था अपने हृदय में क्या क्या अनुभव आए उनको, तो वो अनुभव तो बहुत सारे बताए उन्होंने। लेकिन सार क्या है, इतनी भरी दुख भरी घटना उनके जीवन में भी ना, असाधारण काम नहीं है अपने बच्चे को मरा हुआ देखना, वो भी जन्म के बाद तुरंत, हाँ इतना होने के बाद, इतना उथल पुथल हो गया अंदर, फिर भी इतना आसान नहीं है सब कुछ ये। हाँ मस्ती करना बहुत आसान है, बाहर मजा करना, लेकिन ऐसे घटनाओं को सामना करना आसान नहीं। तो इतने भयंकर प्रसंग में भी भगवान के भक्तों के सहारे कैसे उनको अच्छे अनुभव आए, और भगवान होने का कैसा तीव्र अनुभव आया उनको, हाँ कि भगवान है और वो हर कदम पे साथ दे रहे हैं, अपने भक्तों के माध्यम से हमको सहारा दे रहे हैं। दुख इतना हुआ है हमको, लेकिन उसको अनुभूति इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। वो अनुभव रो रो के बता रहे थे अनुभव, कि हम कितने थैंकफुल हैं कि हाँ कष्ट तो हुआ लेकिन भगवान कितने दयालु हैं, कितना सहारा दिया उन्होंने जो हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे, इतना सहारा प्राप्त तो हुआ, सारे उन्होंने ही योजना बनाया था, हम लोग खाली देख रहे थे क्या हो रहा है। गुजरने के बाद भी सारी व्यवस्था हॉस्पिटल ने किया, उनको कुछ जरूरत नहीं पड़ा, कुछ डेथ सर्टिफिकेट ले जाना है, उधर स्मशान बुक करना है, उधर गड्ढा खोदना है, ये करना है वो करना है, अपने आप सब कुछ हो रहा है ऑटोमेटिक। और लोग हर कदम पर वो दोनों भगवान के होने का अनुभव कर रहे हैं कि भगवान देखो हर कदम पे भगवान है। तो वो अनुभव जो है ना बहुत दिव्य अनुभव है, उसका रिकॉर्डिंग चल रहा था तो इसलिए लेट हो गया मुझे आने में, लेकिन मेरा भी हृदय गदगद हो रहा था देख के, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसे कई घटनाएं हो गई है। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था हमारा, लोगों से हाथ झटकते हुए बाहर आ गए गाड़ी के, गाड़ी का चकनाचूर हो गया पूरा, और हम दरवाजा खोल के बाहर आ गए, कुछ भी किसी को हुआ नहीं कुछ भी। कई प्रसंग जीवन में ऐसे आए हैं जो जिसके वजह से हमको अभी श्रद्धा है इस बात की कि भगवान है, हर कदम पे है, आप देखना सीखो फिर आपको नजर आएंगे। वो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल इसी के लिए, नाम हॉस्पिटल का है, मरीज भर्ती होते हैं, इलाज भी होता है, फार्मेसी भी है, लॉन्ड्री भी है, नर्सिंग भी होता है, सब कुछ काम चल रहा है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य क्या है कि जो मरीज बनकर आते हैं या जो स्टाफ बनकर आते हैं उन सब लोगों को भगवान से जोड़ना है, लिंक करना है उनको। उनका जीवन शुरू करना है, क्योंकि जीवन शुरू तब होता है जब भगवान की मुलाकात होती है। और भगवान की मुलाकात हुए बिना जो जीता है वो तो कुत्ते बल्ले भी इससे उससे अच्छे हैं। लेकिन भगवान को जब मिल जाते हैं हम, परिचय होता है हमारा, तो हमारी सही जिंदगी शुरू होती है और सफल भी होती है। उसके बाद में सही जिंदगी शुरू होती है और सफल हो जाती है, वो मृत्यु भी सफल है जिसमें भगवान का कनेक्शन है आपके पास। ऐसा मृत्यु भी गौरवशाली है, मैं कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो भगवान से जुड़ा हुआ है वो मौत से भी डरता नहीं है। क्यों डरता नहीं है, इसको आंसर मालूम है इसका? आप में से कितने लोग मौत से डरते नहीं है बताओ, या तो कितने लोग डरते हैं मौत से वो बताओ? सब डरते हैं। अरे आप हाथ ऊपर नहीं करो तो चलेगा, मुझे मालूम है। कितना भी आप नाटक करेंगे तो भी सबको मौत का डर लगता है। और मैं तो कह रहा हूं कि उसको मौत का डर लगता नहीं है, तो मैं तो गलत कह रहा हूं ना। उसका उस व्यक्ति को मौत का डर नहीं होता है जिसको पता है कि इस मौत के बहाने मुझे मेरे भगवान से मुलाकात होगी, उनका मिलन होगा हमारा। तो वो ऐसे मौत का इंतजार करता है। और जिन लोगों को ये गारंटी नहीं है वो सब लोग मौत से भागते रहते हैं, कौन मरेगा, किसको मरना है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का भक्त बन चुका है, उसको प्रेम करता है, उसका ही लक्ष्य जीवन में रखा है, उसको पता है कि जब मौत आएगी ना उस समय शरीर छूटेगा और भगवान की मुलाकात हो जाएगी, इसलिए वो डरता नहीं। उससे डरता वही है जो भगवान का भक्त नहीं है, वो डरता है। उसको पता है भगवान नहीं आएंगे, यमराज आएगा ले जाएगा उसको दंड देने के लिए, तो डरता है। ऐसे भगवान का भक्त बनना चाहिए। भगवान का भक्त बनने से जब तक जिंदगी है तभी भी भय नहीं होता है, और मौत के समय भी भय नहीं होता है। हरे कृष्णा। ऐसे जिंदगी जियो जो गौरव करने के लायक हो। याद करे कोई आपको कि इनसे कुछ सीखा हमने जिंदगी में। एक साधु ने एक व्यक्ति को डूबते हुए जंप मार के ऐसे उसको निकाला वहां। तो वो जो था उनका शिष्य ही था वो, तो जो बचाया उसको तो बाहर आया, बोला गुरु महाराज धन्यवाद आपने मुझे बचाया। बोलता है तो गुरु महाराज जी उनको बोलते हैं कि जिंदगी ऐसी जियो जो बचाने योग्य हो। तो बहुत लोग जिंदगी जी लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। ऐसी जिंदगी जियो जो बचाने जैसा लगे कि इसको बचाना चाहिए, बहुत कीमती जिंदगी है। ऐसा जीवन बनाओ जो कीमती हो, है ना। नहीं तो क्या है, दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, कौन किसको याद करता है। कोई महान जीव होता है जो लोगों का कल्याण करता है, भगवान का संत बनता है, उसको अभी भी याद करते। तुकाराम महाराज को याद करते हैं, है ना, ज्ञानेश्वर को याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया जो याद करने लायक है। नहीं तो क्या है, बाकी सब लोग आए और गए, क्या उसमें बड़ा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ा, किधर जाने से नहीं पड़ा, आने से भी नहीं पड़ा, जब थे तभी भी नहीं पड़ा, जब गए तो बिल्कुल भी नहीं पड़ा। नो लॉस नो गेन, व्हाट इज द यूज। कुछ ना कुछ होना चाहिए ना लाभ, हमारे होने से इतना जिंदगी समय बिता रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा काम होना चाहिए जो कहने लायक हो, बताने लायक हो, सुनने लायक हो। तो सब लोग जी रहे, हम भी जी रहे, उसमें क्या बड़ी बात है, व्हाट इज द यूज। और एक बात बता दे संत लोग, जिंदगी जियो तो लोगों के हृदय के अंदर घर बना के जियो, अपनी जगह जो है लोगों के दिल में बनाओ। बाकी मकान तो सबके होते हैं, लेकिन कितने दिलों में आपकी जगह है उतना आपको यश है जिंदगी में। और यही सब बातें भक्ति वेदांत में होती है, इलाज के साथ साथ, और लोगों को भगवान का कनेक्शन प्राप्त होता है। आप भी कर लो, ये मत सोच लो कि मुझे क्या करना है, मुझे तो काम करना है जाना है, ठीक है वो भी अच्छी बात है। लेकिन साथ में अगर फ्री में कोई कनेक्शन मिल रहा है भगवान का, तो आपका उसमें लाभ ही लाभ है, नुकसान कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर किसी का नुकसान नहीं होता है, होगा तो लाभ ही होगा, करवा के लेंगे तो लाभ ही लाभ है आपका, और वो करेंगे तो ही कुछ ज़िंदगी में वैल्यू है ना, तो फिर क्या है। हॉस्पिटल भी बहुत है, हमारा अकेला हॉस्पिटल थोड़ी है, बहुत सारे हॉस्पिटल भी है, सब जगह लोग काम भी करते हैं, यहाँ नहीं तो और भी कहीं करना पड़ता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ जाने से भगवान मिल जाते हैं, तो भगवान ले लो, और जिंदगी को सफल करो। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का? पूछ लो। प्रश्न केवल मनुष्य कर सकते हैं, और कोई जीव प्रश्न नहीं कर सकता है। कोई ऐसा जीव आपके पास, आपका तोता, आपका बिल्ली, कुत्ता, वो प्रश्न कर रहे हैं आपसे? नहीं, प्रश्न केवल मनुष्य कर सकते हैं। आप करो प्रश्न, एकांत तो करो कम से कम। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी,
जैसे आपने बताया कि मनुष्य जन्म मिला है तो हमें आध्यात्मिक कार्य करने चाहिए, तो फिर भी हमारे फोर्सफुली सिन एक्टिविटी करने के लिए प्रेशर आता है।
ये प्रश्न भागवत में भी किया गया है। ये प्रश्न देवाहुति माता ने कपिल देव भगवान को किया है। क्यों ऐसा भगवान होता है लाइफ में, जो करना नहीं चाहिए उसी के पीछे आदमी क्यों करने लगता है, इतना क्यों वो आदि हो जाता है उसके? क्योंकि हमने ना गलत लोगों का संग किया है। गलत लोगों का संग करने से अच्छा आदमी भी गलत बन जाता है। आप शाम को किसके साथ बैठते हो उसके ऊपर आपकी पहचान हो जाती है। किसके साथ घूमते हो, किसके साथ में रहते हो, उससे आपकी पहचान बन जाती है। क्योंकि अनादि काल से हमने गलत लोगों से संग किया है, इस जन्म में भी किया है, पहले जन्म में भी किया है। तो वो जो आपके अंदर नहीं है ओरिजिनली, वो उनके संग के वजह से आपके अंदर आ जाता है। जैसे आप सिगरेट नहीं पीते, लेकिन सिगरेट पीने वाले सब दोस्त आपके हैं, तो एक ना एक ना आप एक तो दम मारेंगे और एक आपको आदत भी लग जाएगी इसकी। आप शराब नहीं पीते हैं, लेकिन आपके जो दोस्त हैं वो सब लोग पार्टियों में इधर उधर करते रहते हैं, आप कितना दिन ना भूलेंगे उनको? एक दिन जाके बैठ ही जाएंगे और एक आध घूम पी लेंगे, फिर आदत बन जाएगी। आपको भगवान के नाम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप सारे आपके भक्त बाय डिफॉल्ट जहाँ काम करते हो भगवान के भक्त हैं, नाम करते हैं, जब करते हैं, उनके साथ में रहकर आप कुछ करते नहीं हो, लेकिन एक दिन बोलेंगे ये लो भाई माला, अभी पकड़ो, अभी माला करो, आज एकादशी का दिन है, तो आप करेंगे। दोनों अच्छे और बुरे दोनों असर जो है ना वो संघ के होते हैं। तो जीव गलत कार्य करने के लिए इतना प्रवृत्त क्यों होता है? क्योंकि वो उसका संग गलत होता है। गलत संग करने से गलत इच्छाएं पैदा होती हैं, गलत इच्छाएं पैदा होने से गलत काम होते हैं, गलत काम करने से फिर उसका फल मिलता है, और जब फल मिलता है तो उसके दुख भोगते हुए जिंदगी समाप्त हो जाती है। अच्छा संग रखेंगे तो अच्छी इच्छाएं पैदा होगी, अच्छी इच्छा पैदा होगी तो अच्छे कार्य करेंगे उस इच्छा से, अच्छी इच्छा का अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, अच्छा फल का अच्छा लाभ फल मिलके आप आनंद से जिएंगे। यही उसका फॉर्मूला है। भगवान कपिल देव ने ये उत्तर दिया, तो पूछते हैं क्या करना चाहिए अगर संग गलत मिला तो? अभी संग बदलना आपके हाथ में है। आपको पता चलेगा कि सारे दोस्त मेरे शराबी हैं, नहीं बैठना चाहिए उसके साथ में, अब जिंदगी मेरी बर्बाद हो जाएगी, अच्छे लोगों को ढूंढो, तो जिंदगी संवर जाएगी, अपने आप संवर जाएगी। संवारने वाले भी लोग होते हैं, बिगाड़ने वाले भी लोग ही होते हैं। चुनना आपके हाथ में है, किसको चुनना है। और कोई प्रश्न है? रामचरित प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।